शांति। अभी आप बहुत अनुभव युक्त सुंदर सुंदर बातें सुन रहे थे और मुझे यहाँ बैठते ही जो संकल्प चला, पहले मैं उसे एक्सप्रेस कर दूं, क्योंकि आपसे पूर्व एक पहले भी युगलों का कार्यक्रम हुआ था और उन युगलों के उस भट्टी के दरमियान एक प्रश्न निकला, कुछ ने पूछा कि अमृत वेले योग तो हम जरूर करते हैं और योग के पश्चात हमें आराम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए सो लें या थोड़ा रेस्ट कर लें। तो उसमें कई प्रकार के उत्तर निकले। कुछ ने ऐसा सोचा कि सारा दिन रेस्ट नहीं मिलेगा, व्यापार व्यवहार में चले जाएंगे और सुबह 4 बजे से उठकर फिर क्लास में गए, टाइम हो जाता है, अगर 4:45 के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करने का टाइम मिले तो थोड़ा सो जाना चाहिए या थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए। लेकिन एक उत्तर बहुत अच्छा जो मुझे लगा, वो उत्तर यही था कि सोने के बाद रिलैक्स करने की आवश्यकता, योग के बाद रिलैक्स करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कारण क्या कि जब हम बाबा को याद करते हैं और याद में हमको ईश्वरा अनुभूतियां होती हैं, शांति शक्ति प्रेम का अनुभव होता है, तो वो अनुभव हमें इतना रिलैक्स कर देता है कि उसके बाद उस टेस्ट को हम बदलना नहीं चाहते और उसकी कॉन्टिन्यूटी में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमको नींद आ जाए। हम किस लिए नींद लेना चाहते हैं, किस लिए रेस्ट लेना चाहते हैं? कहते हैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। इसका मतलब योग में जब बैठे थे तो रिलैक्सेशन का अनुभव आत्मा को इतना नहीं हुआ है, उसे इतनी शांति इतनी शक्ति का, इतना अतिंद्रिय सुख का अनुभव इतना नहीं हुआ है। और जब वो अनुभव इतना नहीं हुआ तब आत्मा ये चाहती है कि थोड़ा सा लेट कर या थोड़ा सो कर रिलैक्स हो जाए। और कई बार क्लास में आने में भी कोई भाई बहने कभी लेट हो जाते हैं तो यही कहते हैं, दीदी योग के बाद जरा आंख लग गई ना तो नींद खुलने में थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए क्लास में आने में लेट हो गए। आपको मालूम है सारा दिन फिर हमें आराम नहीं मिलता, इसलिए योग करके फिर हम थोड़ी देर सो लेते हैं। तो वास्तविकता तो यही है कि अगर सचमुच योग के मध्य अर्थात बाबा की याद करने के पश्चात अगर मुझे इतना रिलैक्सेशन का, इतना सुंदर शांति और शक्ति का, इतने आनंद का अनुभव हुआ होगा तो मैं उस अनुभव को छोड़ना नहीं चाहूंगी, क्योंकि उस अनुभव ने मुझे इतना लाइट कर दिया, इतना रिलैक्स कर दिया, इतना शांत कर दिया कि अब मुझे उस नींद की उस समय आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कोई चीज आप खाते हैं, खाने पर कहते हैं इसका मुंह का टेस्ट बन गया, तो जब टेस्ट अच्छा बन जाता है कोई दूसरी चीज कहते हैं ले लीजिए तो आप कहते हो नहीं अभी मेरे मुख का टेस्ट अच्छा बना हुआ है, अब और कुछ नहीं लेना, अभी नहीं ये टेस्ट बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर योग में हमारा इतना अच्छा टेस्ट रिफ्रेशमेंट का, शक्ति और शांति का और बाबा के क्लोजनेस समीपता का अगर इतना स्वाद आ चुका होगा, फिर ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमको सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, सोए या नहीं सोए। वो स्वयं सब अपनी परिस्थितियों को या अपनी स्थिति को सब स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि अभी गीत चला, दिल चाहता है बाबा उड़कर तेरे पास आए। अब दिल चाहे और आत्मा उड़ ना पाए तो आप सोचिए, पिंजरे के पंछी अगर पिंजरे से बाहर निकलना चाहे और पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाता है तो पिंजरे की लगी हुई उन तारों को मुंह से जोर जोर से उन्हें हिलाने की कोशिश करता है कि किसी तरह रास्ता मिल जाए तो मैं उड़ जाऊं। सचमुच कई बार कई आत्माएं ऐसा अनुभव सुनाते हैं कि हमको बाबा से बहुत प्यार और ईश्वर अनुभूति करने के लिए सदा मन लालियत रहता है, लेकिन वो जो अनुभव का गायन है जब वो वैसा अनुभव नहीं होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पिंजरे के अंदर पंछी कैसे उड़ान भरे और अपने प्रिय प्रीतम से जाकर मिलन मना ले और उसका वो रसा स्वादन अपने जीवन में कर ले। तो मुझे इस समय जगदीश भ्राता जी की भी याद आई। एक बार वो हमसे बात कर रहे थे तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ उनका ये लेख भी होगा। तो इस बात पर वो स्पष्ट कर रहे थे कि बाबा की जो नॉलेज है, बड़े साइकोलॉजिकली बाबा हर चीज को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से सुंदर रूप से हम सबको स्पष्ट करते ताकि बाबा की बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए और हम उस बैठी हुई चीज का सही अनुभव कर सके। जिस पर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है और बाबा ये हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि जैसा चित्र होगा वैसा चरित्र होगा और जैसी दृष्टि होगी वैसी स्थिति होगी। अब प्रश्न आता है कि जैसा चित्र वैसा चरित्र, इसका संबंध हमारे योग से कैसे? आज आप देखिए ऑडियो वीडियो का जमाना आ चुका है। रेडियो मनुष्य ज्यादा नहीं सुनना चाहता, वो टेलीविजन ज्यादा देखना चाहता है। न्यूज वही सुना रहे हैं लेकिन जब न्यूज के साथ साथ दृश्य आता है तो दृश्य सामने आने पर न्यूज का क्लियरेंस, इतना क्लियर पिक्चर न्यूज की आ जाती है कि हम उसमें अगर दया का भाव आना हो तो दया के भाव से भरपूर हो जाते हैं, करुणा के भाव से भरपूर हो जाते हैं, कभी उमंग और उल्लास की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि वो समाचार के साथ वो पूरा दृश्य सामने हमारे आ जाता है। मान लीजिए आज हम किसी को कहें कि भाई हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई और कॉन्फ्रेंस में स्टेज इतनी सुंदर सजी थी कि कॉन्फ्रेंस में आने वालों का पहला इम्पैक्ट स्टेज का ऐसा पड़ा, या फिर हम उन्हें कहना शुरू करें कि इतनी पब्लिक, ऐसा समझो मॉब, एक रश का रश लग गया और लेक्चर जो हुआ वो इतना बढ़िया लेक्चर था, तो आपकी बात के एक्सप्रेशन से वो आपकी बातों का एक पिक्चर अपने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी ऐसा आता है कि पता नहीं कैसी वो स्टेज होगी, लेकिन अगर हमने उनको लाकर सीडी दे दी तो हम कहते देखिए हमारा ये कॉन्फ्रेंस हुई, हम इस कॉन्फ्रेंस की सीडी आपको देते हैं। तो सीडी देखकर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रोग्राम कैसा हुआ, मंच कैसी थी, लेक्चर्स कैसे थे, पब्लिक कितनी थी, वो सब चीजें स्वतः ही क्लियर हो जाती। इसलिए कहा गया है चित्र का मानस चरित्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज मनुष्य के पास एक एडिक्शन हो चुकी है, वो हर चीज को चित्र के रूप में देखता है और चित्र उसके चरित्र पर अच्छा प्रभाव भी डालते हैं। और कई चित्र ऐसे भी हैं जो मनुष्य के चरित्र को गिरावट में लाने के भी निमित्त बन जाते हैं। तो चित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम अपने आप से पूछें कि हम जब योग में बैठते हैं तो चित्र का क्या महत्व है? आपने बाबा के महावाक्यों में सुना होगा, बाबा ने बड़ा स्पष्ट कहा कि बच्चे जैसे सूर्य देखा है ना आपने, या मैं कई बार बाबा का एक अनुभव सुनाती हूं कि जिस समय बाबा ने ये हमको बताना चाहा कि आत्मा का रूप सूक्ष्म है और मैं भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक बिंदु रूप हूं, तो बाबा ने शब्दों में नहीं सुनाया था। उस समय बाबा ने यही कहा जो ऑफिस बियरर बच्ची थी कि जाओ बच्ची, एक प्लेन पेपर लेकर आओ और एक वो पेंसिल लाना जिसकी नोक आगे से खूब बारीक निकाल दी हो। और उस समय बाबा ने उस कागज को हाथ में पकड़ा और हाथ में पकड़कर पेंसिल को ऐसे सामने ला रहे हैं और वो धीरे धीरे, हम सब बच्चे बड़े आश्चर्य में हैं, शिव बाबा का तो चित्र बना हुआ है और आत्मा भी शालिग्राम है। और आज बाबा कहते हैं बाप बच्चों को अपने स्वरूप की पहचान देता है। उस समय बाबा ने कागज पकड़ा और उस पेंसिल को ऐसे ला रहे थे, वो धीरे 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 लाते लाते ऐसे किया और ऐसे करके कहा बच्चे देखा, कुछ भी तो दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो दिया नहीं, बाबा कहते अच्छा फिर दिखाता हूं। फिर बाबा उसको ऐसे ही कर रहा है और छुआ है कि नहीं छुआ मालूम नहीं, छुआ तो है जरूर लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तब बाबा के ये शब्द थे कि बच्चे बाप दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म वो शक्ति है जो इन नेत्रों से देखी नहीं जा सकती। बाप के द्वारा दिए हुए ज्ञान नेत्र से ही बच्चे इसे देख सकते हैं। उस समय ये शिवलिंग का जो गोल चित्र है, ये चित्र बना हुआ था और हम समझते थे शिव बाबा ज्योति स्वरूप है और ऐसा ही चित्र ओवल शेप का है। मुझे याद है उस समय जगदीश भ्राता जी मुरली के बाद बाबा के कमरे में गए, क्योंकि वो सब चीजों का स्थूल फिर निर्माण करते थे, तो बाबा से पूछा कि क्या बाबा ये चित्र जो हमारा चित्र बना हुआ है लाइट के आकार का, इसे समाप्त कर दिया जाए? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, इसे समाप्त नहीं करना, केवल इसके बीच में एक पॉइंट डाल दो। ये उस पॉइंट से निकली हुई लाइट है जो देख रहे हो, लेकिन बाप का स्वरूप ऐसा नहीं है। बाबा तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसकी भी लंबी कहानी है सारी, मैं आपको जो आज के बात से संबंध रखने वाली बातें हैं वही बताना चाहूंगी। तो मैं ये आपको इस बात के लिए बता रही कि चित्र का मनुष्य के हृदय पर या मानस पटल पर एक चित्र बन जाता है। आप देखिए कोई भी बात हम करते हैं तो बात कई बार कई रूप लेती है। आप लोभ के विषय में कोई बात कीजिए, मोह के विषय में कीजिए, क्रोध के विषय में कीजिए, आप देखिए आपके सामने कोई ना कोई चित्र जरूर आएगा। आपका संकल्प चित्र की भाषा में ही होगा, चेक करके देखिए। एक छोटा बच्चा भी पहले व्यक्ति को देखता है, मम्मी पापा को देखता है, घोड़ा गाय आम खरबूजा देखता है, उसे मालूम नहीं क्या है लेकिन चित्र उसके पटल पर आ जाता है। फिर उसको सिखाते हैं ये आम है, अब वैसी शक्ल का जहां भी देखता है आम है, ये तेरी मम्मी है, क्योंकि उसके मन की स्क्रीन पर, उस स्क्रीन के ऊपर वो फोटो छप गई। और जो ही फोटो छपी सामने दूर देखते हैं मम्मी आई, वो जो फोटो है इटली खा रही है, फौरन कहते हैं मम्मी आ गई। तो मेरे भाव को आप समझ रहे होंगे कि हमेशा मनुष्य के विचार चित्र की भाषा में होते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मान लीजिए मैं यहां बैठी और मेरे सामने मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं और मैं चाहती इन चीजों को कहीं रखूं, लेकिन मेरे सामने रहें, दूर न जाएं, कोई चीज मेरे सामने है नहीं, तो मेरे मन में चित्र बनता है कि अगर एक ऐसा फट्टा सा हो जाए और वो फट्टा कोई जाट चाट टांगे से लगा दूं और उस पर वो फट्टा रख दिया जाए और थोड़ा मेरे साइज से इतना सिर से इतना नीचे हो ताकि वो चीज को मैं ठीक से देख पाऊं, तो मैं किसी बड़ाई को बुला करके उस मेज का निर्माण कराती हूं। अब उसका नाम नहीं, मैं उसको कहती हूं भाई एक फट्टा ले लो, चार टांगे लगा दो, इतनी हाइट में होना चाहिए, चीज बन गई। अब मुझे कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो मैंने उसका नाम पीछे रखा, मेज या कुर्सी या सोफा, ये नाम पहले नहीं होते हैं, पहले चीज होती है और चीज के पश्चात नाम होता है, पहले रूप बनता है। मनुष्य के मन में पहले वो आकृति आती है। आप देखिएगा आर्किटेक्ट जब मकान बनाता है तो पहले उसके सामने एक हजार गज जमीन होगी, उस हजार गज जमीन के अंदर मुझे एक बिल्डिंग का निर्माण करना है, और बिल्डिंग बनवाने वालों ने उन्हें बता दिया कि उसमें छह कमरे चाहिए हमें, इतना स्टोर चाहिए, ये हॉल चाहिए, ये लॉबी चाहिए, जो भी उसने बताया। तीन मास हो गए, कहते जी बस बन जाएगा, बस जल्दी बन जाएगा, तीन मास में बना ही नहीं। फिर उसके पास फोन ऐसे किया तो कहते जी आप कल ही आके ले जाइए। अरे तीन दिन तक तो बना ही नहीं, आप कहते अभी बना ही नहीं, अब कैसे बन गया इतनी जल्दी, क्योंकि उसके सामने पूरा मकान का एक सुंदर नक्शा आ गया। कहते जी मेरे सामने बहुत सुंदर नक्शा आ गया, अब आपका ऐसा बढ़िया मकान बनेगा कि कोई कंपेयर भी नहीं कर सकेगा, अभी बना बनाया नहीं है, लेकिन उसके मन में वो पिक्चर इतनी अच्छी खिंच गई कि वो ये समझता है कि आपके मकान का नक्शा किसी अन्य से कंपेयर करने पर इसकी ब्यूटी सबसे ज्यादा होगी। बाद में वो लेकर कागज और उसके ऊपर ड्रॉ करता है, लेकिन पहले वो अपने मन में ड्रॉ कर लेता है, उसके क्लियर पिक्चर। आज हम बाबा का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं। आप सोचिए बाबा वैसे भी तो कह सकता था ना कि मैं ज्योति बिंदु हूं, बैठकर उसने कागज क्यों मंगवाया, पेंसिल की इतनी नोक क्यों कटवाई, और फिर पकड़ के बच्चों के सामने वो बना के दिखा क्यों रहा है, ताकि हमारे मानस पटल पर मन की स्क्रीन पर वो पिक्चर पूरी आ जाए। एक सेकेंड में जो ही हम शब्द कहें आत्मा, हम अपने से पूछें आत्मा क्या है, बाबा ने बता दिया, वो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप। अब मैं ये शब्द बोल रही हूं, अपने से पूछो आपके सामने चित्र आ रहा है कि नहीं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है एक पॉइंट, लेकिन वो लाइट पॉइंट है, दिखाई दे रहा है। आप देखिए कभी कोई बात समझ जाते हैं ना, समझने को इंग्लिश का बड़ा बढ़िया वर्ड है आई सी, कहते उसने मेरे से ऐसा व्यवहार किया, यू सी, जब मैं गया तब वो मेरे से इतनी बुरी तरह बोला, यू सी क्या, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। लेकिन यू सी आर आई सी इट मीन्स मैंने इस बात को समझा, या आप समझने की कोशिश कीजिए। समझ लेना एक देखना होता है। कई बाबा के बच्चों ने समझा है लेकिन देखा नहीं, तो पूरा समझा नहीं है। इसलिए योग में बैठते तो कहते बैठे कैसे जरा बताओ, लाइट माइट कैसे ले जरा अनुभव सुनाओ। तो मुझे ऐसा लगता था हम आपसे दो तीन दिन हो गए मिली, लेकिन जब तक मैं आपको वो अनुभव ना करा दूं मेरा मिलना अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए आज चाहे आपकी मौन भट्टी है, लेकिन मुझे ऐसा आता है कि इस भट्टी से आप सभी एक बार अपने प्यारे बाबा का सही अनुभव करके अवश्य जाएं। और बाबा हम बच्चों को कहता है, जो भी बात कहता है, अब सोचिए बाबा ने ये क्यों कह दिया बच्चे, जैसे आकाश में सूर्य होता है ना, ये कहने की क्या जरूरत है, यही कह देता कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे आकाश में सूर्य जो ही कहते हैं तो हमारे आंखों में, मन रूपी आंख में वो सूर्य आ गया, चमकता हुआ सूर्य। तो बाबा हम बच्चों को बात इतना साइकोलॉजिकली बताता है कि हमारे सामने वो चीज क्लियर हो जाए। अब बाबा ने हमको क्या कह दिया कि मस्तक के मध्य एक ऐसा समझो है, बहुत टाइनी, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वो पॉइंट है, क्योंकि एनर्जी है। अब उस एनर्जी को क्या रूप दिया जाए, तो उसको एक लाइट पॉइंट कह दिया, जिसको बाबा ने कहा अगर तुझे कुछ मुश्किल लगे उसका रूप अपने सामने लाने में, तो तू उसको एक सितारे के रूप में ले आ, ताकि तुझे मुश्किलात ना पड़े, क्योंकि सितारा तेरा इस दुनिया का देखा हुआ पिक्चर है। तो तू अपने सामने एक चमकता हुआ सितारा ला और वो यहाँ विराजमान, जिस पर आप ऐसा देखिए जैसे चांद है या सूर्य, बाबा ने कहा। अब मान लीजिए चांद है, खूब तेज वर्षा हुई और तेज वर्षा में कई गैसेस होती हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं, सब पार्टिकल जो कण 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 सारे हवा में मिले होते हैं, जो सूर्य के इर्द गिर्द थोड़ा उसको धुंधला सा बना देते हैं या चंद्रमा की चमक को कम करते हैं। मान लीजिए बड़ी तेज वर्षा हुई, बहुत तेज, और उस वर्षा के बाद सभी गैसेस डिसॉल्व हो गई और जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो वहां धुंधला सा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, वो सब खत्म हो गए। आप जरा ऐसे चंद्रमा का अपने सामने चित्र तो लाइए, चमकता हुआ वो व्हाइट लाइट है और उसके इर्द गिर्द आपको एक पिंकिश पिंकिश, गुलाबी गुलाबी, जैसे उसकी लाइट लाइट फैली हुई दिखाई देगी। उस पिंक पिंक लाइट के बीच में, गुलाबी गुलाबी लाइट के बीच में वो चंद्रमा चमक रहा है। आपको पिक्चर सामने आ रही है या नहीं आ रही? सहज आना मुश्किल तो नहीं है ना? चंद्र भी देखा हमने, सूर्य भी देखा, सितारे भी देखे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि जिस समय आप ये संकल्प करते हो कि मैं चैतन्य दिव्य ज्योति स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा हूं, तो जो ही ऐसा कहो तो शब्द के साथ आपको वो रूप ऐसा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। हर बात आप बाबा की देखो, बाबा चित्र। अब मान लीजिए संदेशी ट्रांस में गई, अब ट्रांस में बाबा कोई भी बात सुना सकता है ना, लेकिन संदेशियां ट्रांस में जाती हैं, क्या देखती हैं, आकर सुना रही हैं। कहती जब मैं वतन में गई मैंने क्या अनुभव किया कि बाबा जैसे एक लाइट ही लाइट के आकार में है और शिव बाबा लाइट पॉइंट उसमें प्रवेश हुआ। मैं भोग की थाली हाथ में पकड़ी हुई थी और थाली और मैं सब ऐसा उस लाइट के वतन में सब कुछ लाइट ही लाइट था। तो मैंने बाबा के आगे वो थाली रखी, मैंने कहा बाबा मैं आपके लिए भोग लेकर आई, अब संदेशी सुना रही है, चित्र ला रही है सब, मैं आपके लिए भोग लेकर आई। बाबा कहते अच्छा बच्ची। तो जब बाबा बैठा है कहा अच्छा बच्ची, तो मैंने भोग की थाली के ऊपर रुमाल ढका हुआ था, रुमाल के ऊपर फूलों की माला या फूल रखे हुए थे, तो मैंने वो रुमाल और फूलों को उठा के एक तरफ किया और बाबा को भोग की थाली बाबा के आगे अर्पित करने के लिए ले आई। भोग अर्पित करने के बाद मैंने उस फूलों को माला को हाथ में पकड़ा और मैंने बाबा के गले में डाल दिया। अब मान लीजिए आप सुन रहे हो ना, आपके सामने चित्र आ रहा है या नहीं आ रहा, थाली भी आ रही है, वो उठा के उसने रख दिया, रुमाल और फूल एक तरफ कर दिए, अब वो थाली बाबा के सामने गई है, भोग लगा, अब वो माला ली रुमाल के ऊपर से लेकर वो बाबा के गले में डाल दी। अब ये दृश्य हो गया, बाबा उससे पूछता है, फिर वो आकर सुनाती है, बाबा मेरे से पूछता है कि तुम भोग की थाली को तो ढक कर लाई हो और फूलों को बिना ढके ऊपर रख के लाई हो, ऐसा क्यों किया? का बाबा ये तो हमेशा ही ऐसा करते। बाबा ने कहा तुमने ऊपर फूल थे, तुमने रुमाल और फूल उठा के एक तरफ रख दिए और बाबा के आगे तुमने भोग की थाली पहले रखी, पहले माला ही बाबा के गले में क्यों नहीं डाल दी, पहले भोग ही क्यों लगाया? का बाबा ऐसा भी हमेशा ही करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, ज्ञानी बच्चों को हर चीज का रहस्य मालूम होना चाहिए, बिना रहस्य के ज्ञानी का एक बोल भी व्यर्थ होता है, एक कर्म भी व्यस्त जाएगा। तो वो इच्छुक हुई, अब इसका रहस्य क्या है? तो बाबा ने बड़ा सुंदर उसे बताया कि बच्चे आज गुणों से परिपूरत ये देवी देवता जिनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित हैं और हर जाने वाला प्राणी उनके दर्शन करता है, लेकिन वो ऐसे जीवन उन्होंने बनाया कैसे जो उन्होंने प्रभु अर्पित भोग किया, जो अपने तन मन धन सब कुछ ईश्वर अर्पित किया, वो ढका हुआ किसी को मालूम नहीं, केवल देवता जीवन मालूम है, देवता बने कैसे ये उनका पुरुषार्थ ढका हुआ है। और जब तक बाप को अर्पित नहीं सब कुछ कर लेते, तब तक बाबा के गले का हार नहीं बन सकते, इसलिए पहले तुम अर्पित करती हो फिर गले में माला डालती। अब मान लीजिए इतना लंबा संदेश बाबा ने सारा चित्र खींचकर, इतने चित्र की क्या जरूरत थी, ऐसे ही बाबा बता सकता था, लेकिन वो चित्र सामने इस कदर खींचा कि हमारे सामने पिक्चर ऐसी क्लियर हो गई कि हम देख सुन रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं संदेशी ने थाली की, अब बाबा ये पूछ रहा है, अब उसने माला पकड़ी, हमारे सामने सारा दृश्य आता जा रहा है। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि जिस समय आप ये समझते हो कि अब मुझे आत्म स्मृति की स्थिति का अभ्यास करना है, उस समय आपके मन रूपी शक्ति पर आपका अपना चित्र क्लियर हुआ, क्योंकि बाबा ने कई बार बता दिया कि एक चमकता हुआ बिंदु है और वो चमकता हुआ होने के कारण, उसकी किरणें निकली हुई कह देने के कारण हम उसे एक सितारे जैसा भी कह सकते, बहुत क्लियर पवित्र शुद्ध शांत स्वरूप आत्मा जिसका मैंने बताया कि वर्षा हो जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और एकदम चमकता हुआ पवित्र उज्ज्वल वो चांद दिखाई देता है। ऐसा हम जब अनुभव करें तो अपने आदि और अनादि स्वरूप में स्थित होकर करें कि मैं एक चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, एकदम चमकता हुआ लाइट की किरणें उसकी निकल रही और वो किरणें नहीं लेकिन शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, ये सब शक्तियों से भरपूर मैं टाइनी, एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म पॉइंट, मैं चेतन हूं। स्वयं स्वयं को ज्ञान के नेत्र से देख रहा हूं। आप देखिए आंखें मेरी मुख पर लगी हुई हैं, लेकिन आंखें आंखों को नहीं देख सकती या मुख को नहीं देख सकती। आंखों को मुख देखने के लिए अपना शीशा चाहिए, हालांकि आंखें यही है, मुख ये है। ठीक इसी प्रकार हूं मैं आत्मा ज्योति, लेकिन स्वयं को हम स्वयं देखें कैसे? तो बाबा ने हमको समझ का दर्पण दिया, समझ का शीशा दिया और हमको कहा कि तुम अपने चैतन्य स्वरूप को देखो। बहुत उज्जवल बच्चे तेरा स्वरूप है, चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश तेरा स्वरूप है, शांति, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, मय संपन्न तेरा स्वरूप है। इतना सूक्ष्म स्वरूप तू आत्मा है, ये केवल मात्र तेरा शरीर, इसका बहुत सुंदर सिंहासन है जिस सिंहासन के ऊपर तू विराजमान है। अब जब मुझे स्वयं को देखना है तो मैं सिंहासन को क्या देखूंगी? सिंहासन की बाजू कैसे हैं, तो सिंहासन का टांगे कैसी हैं, सिंहासन के गद्दे कैसे हैं, मुझे अब उनकी आवश्यकता नहीं है। मुझे देखना है स्वयं को स्वयं से। आप बताओ देख सकते हो कि नहीं देख सकते? अपने को, किसी और को देखने की बात मैं पीछे बताऊंगी, लेकिन पहली बात है जरा सब सावधान होकर बैठना, सोना नहीं। सो गए तो मिस हो जाएगा, फिर देख नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है सुनते सुनते भी थक जाता है कभी, और नाश्ता एक नशा होता है, करने के बाद भी थोड़ा नशा चढ़ता है, इसलिए बीच में जगा दूं तो बुरा नहीं मनाना। तो थोड़े क्षणों के लिए अभी हम सब स्वयं को देखें। बाबा कहते हैं जब तक तुमने स्वयं को ही नहीं देखा तो मुझे कैसे देखेगा? कहते भी है ना, प्रभु तेरे से दूर नहीं, अरे देखने वाला नूर नहीं। तेरे पास स्वयं की आंखें नहीं तो तू उस प्रभु को देखेगा कैसे? और हम कहते हैं उड़ के तेरे पास आ जाऊं, वो कहते हैं तू चाहता तो है, लेकिन हे उड़ने वाले पंछी, तुमने पहचानना है स्वयं को। तेरे को कोई पिंजरे में नहीं बांध सकता, तू स्वतंत्र पंछी है, क्योंकि तेरी उड़ान मन और बुद्धि से है, तेरी उड़ान इस तन से नहीं है। ये प्रकृति का बना हुआ चोला ये यहाँ के लिए है, मेरे पास आने के लिए नहीं है। मेरे पास तुझे तेरा मन और बुद्धि ले आएगा। साकार बाबा को हमने देखा, बाबा का ये अभ्यास बच्चों की दृष्टि वृत्ति को चेंज कर देता था। हम बच्चे समझते हैं जब योग लगाना है उस समय देही स्थिति का अभ्यास करना है, लेकिन ये तो हमारा रियल ओरिजिनल वास्तविक स्वरूप है ना। हम अपने स्वरूप में स्थित रहें, जो हैं, जैसे हैं और जहां हैं, वो भूल क्यों जाते हैं? अब दूसरी बात आती है कि आत्मा को सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व शक्तियां लेकर सारे विश्व को शक्तियों का योगदान देना है। और बाबा बच्चों को कहते हैं कि बच्चे यह काम सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के विश्व भर में कोई दूसरी आत्मा नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मेरे साथ कनेक्शन नहीं है। वो पावर और उस पावर को भेजने की पावर सिवाय सर्वशक्तिवान से कहीं अन्य जगहों से नहीं मिल सकती। इसलिए जिस समय हम स्वयं को आत्मा ऐसे निष्ठा की स्थिति में बैठ गए कि चमकता हुआ दिव्य प्रकाश में आत्मा हूं, फिर फौरन सामने लाओ कि मुझ आत्मा का पिता जो मैंने बताया, बाबा ने बताया कि मैं भी चमकता हुआ एक दिव्य ज्योति हूं, तुम आत्मा गुणों का स्वरूप हो, मैं गुणों का सागर हूं, प्रतिपल प्रतिक्षण वो सर्व शक्तियां सर्व किरणें जैसे सर्व विश्व की आत्माओं के लिए सदा ही हैं, लेकिन जो उन्हें रिसीव करे, इन शक्तियों को लेने वाली आत्मा है, देह भान में वो शक्तियां नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे प्रतीत होता है, जैसे कल रात को भी हमसे प्रश्न पूछा कि कैसे शक्ति ले और कैसे शक्ति दें, हमको ऐसा लगता है वो सर्व शक्तियां उस सर्व शक्तिवान से निकल रही हैं स्वतः ही, और वो जो निकल रही है मैं उनके सन्मुख हूं, तो शक्तियां मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और जब वो मेरे ऊपर पड़ रही हैं तो मेरे मन में केवल एक संकल्प है कि विश्व की आत्माओं को ये सब अनुभूतियां प्राप्त हो जाएं, और वो जो किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं वो मेरे से चारों तरफ जा रही। आपने एक चित्र देखा होगा, एक हमारी बुक है जिसमें सामने ज्योति बिंदु है और एक भाई बैठे हुए हैं, वो ज्योति से लाइट और माइट आ रही है बड़ी तेजी से और वो आत्मा पर पड़ रही है, लेकिन उस समय वो आत्मा अपने स्वमान और स्वरूप में है। तो जैसे वो लाइट पड़ती है तो वो जो शरीर है वो टोटल लाइट लाइट का देखने में आ रहा है, और वो जो शक्तियां हैं जो ईश्वरीय शक्तियां आ रही हैं वो लाइट के रूप में किरणों के रूप में जैसे चारों तरफ निकल के जा रही। बाबा हम बच्चों को कहता है, मैं भी नहीं कहता हूं शक्ति ले लो, तुम्हें भी कहने की क्या जरूरत है शक्ति ले लो। जिस पर मुझे याद है, एक बार देवियों का पूजन जिन दिनों में होता है तो अपने भाई बहनों ने चुन्नी मुन्नी दे के हमको ऐसे बिठा दिया, और एक गीत चल रहा था, शक्ति दे माँ शक्ति दे माँ। तो मुझे इतना अंदर से आया, प्यारे बाबा ये आपसे शक्ति मांग रहे हैं, हम कैसे शक्ति देंगे, और कितने करुणा का प्यार का ये गीत है। तो ऐसे जैसे बाबा से जैसे एक रूह रिहान चल रही है, तो बाबा कहते हैं, बच्चे केवल आपको अपने को शक्ति स्वरूप ही तो समझना है, मैं हूं ही शक्ति रूपा। तो ये जो शक्ति रूपा की आपकी स्मृति की स्थिति है वो दूसरी आत्माओं को शक्ति देने का काम करेगी। आप कई समझ कह देते हैं, ये तो अपना अनुमान हुआ ना, अनुमान नहीं है, ये मन का संबंध ही बाबा से है, तन का संबंध बाबा से नहीं होता है। जैसे मैंने आर्किटेक्ट की बात सुनाई तो उसके मन में वो हजार गज जमीन का नक्शा बड़ा क्लियर बन गया, अनुमान ही तो हुआ, लेकिन अनुमान से उसे एक एक जगह ये रूम्स है, यहाँ स्टोर निकलेगा, ये किचन है, ये लॉबी है, ऐसी क्लियर है कि उसे कागज पर बनाने में कुछ क्षण ही लगते हैं, टाइम नहीं लग रहा। और जितने भी हमारे चमत्कार हैं, आज रेल चली या एरोप्लेन चला, कुछ भी चला, तो ये चीजें पहले अनुमान में तो आई कि अगर एक पक्षी ऐसे परों से उठ सकता है तो इसके बीच में ऐसा बनाए तो इंसान भी तो उड़ा के जहाज भी तो बन सकता है। अनुमान नहीं, वो क्लियर रियल अनुमान है जो सत्यता है। तो सत्यता जब स्वरूप में आ जाती है तो उसको फिर अनुमान नहीं कहते। तो हम भी जब स्वयं बैठते हैं तो वो फौरन एकदम यही ज्योति बिंदु आत्मा, क्योंकि ज्योति से आप देखिए, अगर मैंने अपनी खिड़की बंद की हुई है, सूर्य से बहुत तेज धूप आ रही है, लेकिन वो धूप की किरणें मेरे ऊपर नहीं आ पा रही क्योंकि मैंने खिड़की बंद की है। ठीक इसी प्रकार अगर वो किरणें लेनी है तो मुझे अपनी खिड़की दरवाजे खोलने। तो बाबा भी कहते हैं केवल मन से तन को अलग कर दो और स्वयं स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाओ, जैसे सब खिड़की दरवाजे खोल के आप चमकता हुआ ज्योति बिंदु बैठ गया और ज्योति स्वरूप को सामने देखो, वो आपको जो शक्तियां दे रहा है वो शक्तियां न केवल आपको शक्तिशाली बनाएंगी लेकिन आपसे अनेक आत्माओं को शक्ति का आभास अनुभव होगा। बच्चे तब दुनिया वाले समझ पाएंगे कि इनको सर्वशक्तिवान का ज्ञान मिल रहा है।